بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ آج اب سورہ واقعہ کی آتما کو شانتی پردان کرنے والی پہلی سے لے کر سولہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، جب وہ گھٹت ہونے والی مہان گھٹنا ارتھات قیامت گھٹ جائے گی اور اس کے گھٹت ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ گھٹنا الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی، اس سمے دھرتی کو بھوکمپ کے زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ ٹوٹ کر چور چور ہو جائیں گے، تو وہ بکھری ہوئی دھول ہو کر رہ جائیں گے، اور تم لوگ تین پرکار کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے، اور کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسے دربھاگی ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہی ہیں، وہی اللہ کے نکٹ ورتی ہیں، وہ سورگ کے نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے تو بہت سے ہوں گے اور کچھ پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، جو موتی اور یاقوت جڑے تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ آج گروار ہے، مارچ کی دوسری، شابان کی 9 اور اسفند ماہ کی 11 تاریخ۔ دوستوں، کارکرم کی روپ ریکھا آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ وگت کی ہی بات ہی، پہلے ہم کارکرم میں وشو سماچار پیش کریں گے۔ وشو سماچاروں کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم پیش کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم کے اپرانت ہم آپ کو ساپتاہک کارکرم سنوائیں گے آج کی بات۔ ہماری اس سبھا کا انتم کارکرم ہوگا سفل مہیلائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، اب آپ قائم رضوی اور مریم مہر رادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ دیشوں دوارا بھرامک جانکاریوں سے پربھاوت ہو کر ٹکراؤ کا راستہ اپنانا ٹھیک نہیں ہے۔ یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ اپنے پشچمی گھٹکوں پر لگاتار دباؤ بنائے ہوئے ہے۔ زائونی شاسن نے نیتن یاہو کی نیتیوں کا ویرودھ لگاتار شمع کے جائے زائونی شاسن میں نیتن یاہو کی نیتیوں کا ویرودھ لگاتار کیا جا رہا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا راجنیتیکرن نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
راشٹرپتی نے بیلجیم کے پردھان منتری سے کہا ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران یورپ سہت دنیا کے ساتھ اچھے اور رچناتمک سمبندھوں کا اچھک ہے۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے بیلجیم کے پردھان منتری الیگزینڈر ڈی کرو سے ٹیلیفونی بات میں کہا کہ یدی کوئی سرکار آتنکوادیوں اور پٹھوؤں کی جھوٹی تتھا بھرامک جانکاریوں کے پربھاؤ میں ٹکراؤ کا راستہ چنتی ہے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ راشٹرپتی سید ابراہیم نے کہا کہ اسلامی گڑتنتر ایران کی اچھا ہے کہ وہ سہیوگاتمک دشٹیکون سے مدوں کا سمادھان کرے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ دوسرا پکش بھی ایسا ہی دشٹیکون اپنائے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی نے بل دیا کہ یورپی دیشوں کی زمینوں کو ایرانی راز کے ہتوں کے خلاف سازش اور خطروں کا سروت نہیں ہونا چاہیے۔
اسلامی گنتنتر ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے سی این این کے ساتھ ایک وشیش ساکشاتکار میں ایران میں دنگے اور فساد کے بارے میں امریکی میڈیا کی حالیہ رپورٹوں کو غلط اور راجنیتک قرار دیا ہے۔ ایران میں حالیہ اشانتی کے دوران سی این این سماچار نیٹ ورک نے विरोधी मीडिया के साथ मिलकर काम किया और अनाम स्रोतों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित करके इन अशांति को जीवित रखने और इस्लामी गणतंत्र की छवि को खराब करने की कोशिश की। ईरान प्रेस के अनुसार अमरीकी CNN चैनल की मेजबान क्रिस्टियन अमानपुर ने, जिन्होंने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का साक्षात्कार लिया, दावा किया कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर उनको उत्पीड़ित किया गया। विदेश मंत्री ने CNN की होस्ट के जवाब में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को सिरे से खारिज कर दिया और जोर दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
ईरान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेशों में स्कूलों के केंद्र ने घोषणा की है कि वर्तमान समय में 6,70,000 अफगान छात्र ईरान में पढ़ रहे हैं। इस्लामी क्रांति के नेता के निर्देशों के अनुसार किसी भी अफगान नागरिक को, चाहे उसके पास कानूनी दस्तावेज हों या न हो, ईरान में ज्ञान प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। इस्लामी क्रांति के नेता के निर्देशों के आधार पर ईरान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेशों में स्कूलों के केंद्र ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर कोशिशें की हैं ताकि बाधाओं और रुकावटों को दूर किया जाए और सारे अफगान छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए।
रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख सर्गेई कैटरिन ने ईरान के साथ व्यापार में 20% की वृद्धि की सूचना देते हुए कहा कि उन्हें आने वाले वर्षों में तेहरान और मॉस्को के बीच व्यापार का स्तर 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है। हालिया वर्षों में ईरान और रूस के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। साझा हितों के अलावा दोनों देशों को कई आम खतरों का भी सामना करना पड़ा है। ईरान प्रेस के अनुसार रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख सर्गेई कैटरिन ने कहा कि 2022 में रूस और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 20% वृद्धि होकर $4.9 बिलियन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये कारोबार बढ़कर $40 बिलियन तक हो जाएगा।
अमरीकी सेनेटरों ने युद्धोन्मादी रवैया अपनाते हुए यूक्रेन की तुरंत मदद करने के लिए पश्चिमी घटक देशों पर दबाव डाला है। जारी वर्ष में अमरीका की सशस्त्र सेना की सेवा कमेटी की दूसरी बैठक में अमरीका के कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने हालिया कुछ पराजयों के बावजूद उल्लेखनीय सैन्य प्रगति से संबंधित रूसी सेना के संकल्पों पर चर्चा की। रॉजर वेकर सहित अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञों ने, जो अमेरिकी सशस्त्र सेना की सेवाओं से संबंधित समिति के सीनियर सदस्य भी हैं, बल दिया है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे अमेरिका के कुछ बड़े घटकों को चाहिए कि वो और अधिक कार्रवाई करें। इस कमेटी में जोनेप और सेंट सहित कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी बल दिया है कि इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि युद्ध में यूक्रेन को पराजय हासिल हो।
न्यायिक सुधार कानून को लेकर तेल अवीव में लोगों ने नेतन्याहू के विरुद्ध फिर प्रदर्शन किए हैं। ज़ायोनी शासन में हजारों प्रदर्शनकारी न्यायिक सुधार कानून को वापस लिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी बुधवार की शाम को तेल अवीव की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने नए कानून के विरोध में नारेबाजी की। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान ज़ायोनी पुलिस तथा कॉलोनी वासियों के बीच झड़पें आरंभ हो गईं। ज़ायोनी सेना के अनुसार नेतन्याहू विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वालों में से 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन प्रदर्शनों में कम से कम 11 लोग घायल हो गए। कुछ कॉलोनी वासियों ने उस ब्यूटी पार्लर का घेराव किया जहां पर नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू मेकअप करवा रही थी। ब्यूटी पार्लर का घेराव करके प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे कि हमारे घर जल रहे हैं और नेतन्याहू की बीवी अपने बाल रंगवा रही हैं। नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार को इस समय इसराइल की सबसे कट्टर दक्षिणपंथी सरकार माना जा रहा है। नेतन्याहू के मंत्रिमंडल द्वारा न्यायालय की शक्ति छीनने के मुद्दे से इसराइली बहुत नाराज हैं। यही कारण है कि लंबे समय से इसराइली नेतन्याहू की नीतियों के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
इसराइल के आंतरिक सुरक्षा अध्ययन केंद्र के प्रमुख ने इस शासन की वर्तमान व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को इसराइल को नष्ट करने के लिए सटीक और पिन पॉइंट मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो भीतर से नष्ट हो रहा है। इसराइल के सैन्य खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख और आंतरिक सुरक्षा अध्ययन केंद्र के प्रमुख ने इसराइल के अंदर से तबाह और बर्बाद होने के बारे में ज़ायोनी अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा हालिया दिनों की बारंबार स्वीकारोक्ति की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमें नष्ट करने के लिए सटीक मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम भीतर से ही टूट रहे हैं।
यमनी सूत्रों का कहना है कि सादा प्रांत पर हमलावर सऊदी गठबंधन के हमले में 6 यमनी नागरिक हताहत और घायल हो गए। अल मसीरा चैनल के अनुसार हमलावर सऊदी गठबंधन ने यमन के उत्तरी प्रांत सादा के अल रकू क्षेत्र पर हमला किया जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए, जबकि हमलावर सऊदी गठबंधन ने पश्चिमी प्रांत हुदैदा पर पिछले 24 घंटे के दौरान 151 हवाई हमले किए थे। यमन के मानवाधिकार संगठन एनुअल इंसानिया का कहना है कि हमलावर सऊदी गठबंधन यमन के सादा प्रांत में लगातार हमले कर रहा है। इस संगठन का कहना है कि इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उनमें शीर्ष पर मौजूद अमरीका की चुप्पी निंदनीय है।
चीन का कहना है कि एक वैज्ञानिक मामले में किसी भी देश की गुप्तचर सेवा का हस्तक्षेप ये बताता है कि उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। चीन का कहना है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका को इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार चीन का कहना है कि अमेरिका को वास्तविकताओं का सम्मान करना चाहिए और कोरोना के मुद्दे का राजनीतिकरण करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। चीन के अनुसार कोरोना के फैलाव के बारे में अमरीकी एजेंसियों के हस्तक्षेप का बीजिंग खुलकर विरोध करता है। एक वैज्ञानिक मामले के किसी देश की गुप्तचर सेवा का हस्तक्षेप ये बताता है कि उस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
अमेरिका ने F-16 युद्धक विमानों को ताइवान भेजने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि ताइवान को F-16 युद्धक विमान तथा उससे संबंधित उपकरणों को बेचने का प्रस्ताव पारित हो गया है। अमरीकी सरकार ने इस संबंध में $619 मिलियन के समझौते की सूचना दी है। संयुक्त राज्य अमरीका के फेडरल कानूनों के अनुसार रक्षा के लिए वो ताइवान को हथियार बेच सकता है, लेकिन चीन के हमले की स्थिति में उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ताइवान की सहायता करे।
अमरीका ने उत्तरी कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि उत्तरी कोरिया के सत्तारूढ़ दल की केंद्रीय समिति के 3 सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन पर उत्तरी कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सहयोग करने के आरोप में ये प्रतिबंध लगाए गए। अमरीकी वित्त मंत्रालय के अनुसार उत्तरी कोरिया के सत्तारूढ़ दल की केंद्रीय समिति के 3 सदस्यों की संपत्ति को सीज करते हुए उन पर हर व्यापारिक गतिविधि पर रोक भी लगा दी गई है। याद रहे कि उत्तरी कोरिया द्वारा पहले परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने सन 2006 में प्योंगयांग के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए थे।
तालिबान का कहना है कि अमेरिका खुलकर दोहा समझौते का हनन कर रहा है। तालिबान का दावा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की वायुसीमा का उल्लंघन किया है, जो दोहा समझौते का खुला उल्लंघन है। अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाले दोहा समझौते की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में तालिबान के खनन मंत्री शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान की वायुसीमा का उल्लंघन गैरकानूनी है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि SBI और LIC को अडानी में निवेश करने के लिए बाध्य किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अडानी समूह को बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम को निवेश करने के लिए बाध्य किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राहुल गांधी ने जानना चाहा है कि किसने SBI और LIC को उद्योगपति गौतम अडानी के समूह में निवेश करने का आदेश दिया था। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण दो जर्मन राजनयिकों के निष्कासन की। राजनीतिक चर्चा में हम मेक्सिको के राष्ट्रपति के बयान पर भी नजर डालेंगे, जिन्होंने अमेरिका के हस्तक्षेप की निंदा की है। भारत में तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों और कुछ राज्यों के उपचुनावों के परिणाम आज सामने आए हैं, इस पर भी हम आपको एक रिपोर्ट सुनवाएंगे। तो चर्चा के विषय यही है, आरंभ करते हैं जर्मन कूटनयिकों के निष्कासन से। ईरान के आंतरिक और न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश करने वाले जर्मनी के दो राजनयिकों को बाहर निकाल दिया गया है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने देश से दो जर्मन राजनयिकों को अवांछित तत्वों के रूप में निष्कासित करने की घोषणा करते हुए कहा है कि इन दोनों राजनयिकों को देश के आंतरिक और न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप की वजह से देश से निकाल दिया गया है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्रालय में जर्मन राजदूत को तलब किए जाने और देश की ओर से आपत्ति से उन्हें अवगत कराए जाने की इत्तला दी और कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान विस्तारवादियों के खिलाफ निर्णायक और पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। श्री कनानी ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की प्राथमिकता हमेशा आपसी सम्मान के माहौल में बातचीत का वातावरण बनाए रखना है, लेकिन अगर कुछ पक्ष ईरान के सैद्धांतिक मानकों और राष्ट्रीय संप्रभुता की अनदेखी करना चाहते हैं तो वैकल्पिक विकल्पों को परिभाषित करना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ दिनों पहले जर्मन विदेश मंत्रालय ने बर्लिन में ईरान के चर्च डी अफेयर्स को तलब करते हुए ईरानी जर्मन नागरिक और आतंकवादी गुट के सरगना जमशेद शार महद की सजाए मौत के आदेश के बाद ईरान के दो राजनयिकों को अवांछनीय तत्व करार देकर देश से निकलने का आदेश दिया था। बर्लिन की कार्रवाई न केवल ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का एक स्पष्ट उदाहरण है, बल्कि आतंकवाद के लिए जर्मनी का प्रत्यक्ष समर्थन और आतंकवाद के बारे में पश्चिम के दोहरे मानकों की पुष्टि भी करता है। आतंकवादी गुट के सरगना जमशेद शार महद को 21 फरवरी को तेहरान की अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और हमले का मंसूबा तैयार करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। जमशेद शार महद आतंकवादी गुट तुंदर का सरगना है और उसे पश्चिमी देशों का आर्थिक और सामरिक समर्थन हासिल है। इस सरगना ने अपने आतंकी तत्वों को विस्फोटक और आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए आदेश जारी किए थे। इस्लामी गणतंत्र ईरान की जनता के प्रति जर्मनी के शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण के बारे में उल्लेख किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा इराक के बासी शासन के लिए बर्लिन की व्यापक सहायता है, जो थोपे गए युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों के विकास और उत्पादन तथा उपयोग के लिए की गई थी।
मेक्सिको के राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिका की एक बहुत बुरी आदत यह है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। समीक्षा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने स्वतंत्र देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने की अमेरिका की बुरी आदत की आलोचना करते हुए कहा, अमेरिका की एक बहुत बुरी आदत है और वो यह है कि वो हमेशा उन मुद्दों में हस्तक्षेप करता है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। पेरू संकट में वाशिंगटन की भूमिका का उल्लेख करते हुए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा, अगर बाइडेन प्रशासन अपनी इसी नीति को जारी रखना चाहता है तो उसे पेरू में जो हो रहा है उससे निपटना चाहिए। वहां के अमरीकी राजदूत तख्तापलट की साजिश रचने वालों के सलाहकार हैं। ओब्रेडोर ने अमरीका के इस पाखंड को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से वाशिंगटन के तंत्र उसी प्रक्रिया की निरंतरता है जो उसने लैटिन अमरीका पर हावी होने के लिए इस्तेमाल किए थे। इससे पहले भी मैक्सिकन राष्ट्रपति ने अपने देश में एनजीओस को अमेरिकी फंडिंग को व्हाइट हाउस की हस्तक्षेपपूर्ण विदेश नीति बताया था, जो एक घिसीपिटी औपनिवेशिक नीति का हिस्सा है और अब ये इस समय में फिट नहीं बैठ रही है। उन्होंने कहा कि मैक्सिकन सरकार एक कानूनी सरकार है जो लोकतांत्रिक रूप से और लोगों की इच्छा से चुनी गई है, इसलिए इस तरह के कार्यों से हस्तक्षेप करने वाली सरकारों की नैतिक और राजनीतिक साख ही खराब होगी। दरअसल वाशिंगटन खुलेआम क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उसने मैक्सिको में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के समर्थन के बहाने इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देना शुरू कर दिया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति द्वारा लैटिन अमरीकी देशों में अमरीका की दखलअंदाजी की गंभीर और अभूतपूर्व आलोचना ने इस क्षेत्र में अमरीका की विश्वसनीयता को एक बार फिर बट्टा लगा दिया है। वास्तव में वाशिंगटन आज भी खुद को लैटिन अमरीका का संरक्षक और मालिक समझता है। इसी मानसिकता के तहत वो हमेशा इस क्षेत्र के देशों को दबाकर रखना चाहता है। वो इस क्षेत्र में वामपंथी नेताओं और सरकारों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता रहा है। ये दृष्टिकोण अमरीका के अहंकारी और दबंग स्वभाव का परिचायक है। हालांकि वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ और बोलिविया में उसे स्पष्ट रूप से मुंह की खानी पड़ी है और विफलता का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में वामपंथी राष्ट्रपतियों ने अमेरिका के खिलाफ अपना दमखम दिखाया है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत के तीन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और इसके साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव आयोजित हुए। चुनावों के नतीजे आज सामने आए। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभाओं के लिए चुनावों के परिणाम काफी हद तक स्पष्ट हो गए हैं। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने फिर से परचम लहरा दिया है और दोनों ही राज्यों में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां सबसे अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मेघालय में एनपीपी यानी नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी यद्यपि सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी दूर है। टीकाकारों की माने तो एनपीपी भाजपा और अन्य के समर्थन से सरकार बना लेगी। वैसे भाजपा एनपीपी के नेता और मुख्यमंत्री संगमा पर देश की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप लगाती रही है। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम से भाजपा के समर्थक उत्साहित हैं और देश भर में अपने कार्यालयों पर जश्न मना रहे हैं। पूर्वोत्तर में भाजपा गठबंधन को मिली सफलता का जश्न नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भी मनाया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा ने चुनाव परिणाम पर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि भाजपा एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी और हमारी ये बात सही सिद्ध होने जा रही है। नागालैंड में भाजपा और एनडीपीपी ने 36 सीटों पर बढ़त बनाई है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि एनपीएफ को 2 और अन्य को 22 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन को 34 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस और वाम गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि क्षेत्रीय दल टिपरा मोथा को 12 सीटें मिल सकती हैं। मतगणना अभी जारी है, लेकिन परिणाम ज्यादा बदलने की संभावना कभी नजर आती है। इस बार भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अपने सभी बड़े नेताओं के साथ पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों मेघालय और नागालैंड में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए जोरदार चुनाव अभियान चलाया था, लेकिन इन दोनों ही राज्यों के क्षेत्रीय दल वहां की राजनीति के बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली चुनावी परीक्षा में राहुल गांधी को झटका लगा है और पूर्वोत्तर में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस को कामयाबी मिली है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता खुला है। महाराष्ट्र में 27 साल के बाद कांग्रेस ने कस्बा पेट विधानसभा सीट पर भाजपा को हराकर कब्जा जमाया है, जबकि तमिलनाडु की सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब पेश है कार्यक्रम आज की बात। आज की बात।
श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमृतपाल नाम के एक सिख नेता की, जो चर्चा के केंद्र में है। भारत के मीडिया और राजनीतिक गलियारों ही नहीं बल्कि आम लोगों की बातचीत में भी अमृतपाल सिंह, उनके संगठन और पुलिस थाने पर उनके हमले की बड़ी चर्चा है। कुछ दिन पहले वारिस पंजाब दे नामक संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने अपने सहयोगी तूफान सिंह को रिहा कराने के लिए अमृतसर के अजनाला थाने का घेराव कर लिया। अमृतपाल सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। इनमें कुछ के पास बंदूकें और तलवारें भी मौजूद बताई जाती हैं। इसके अलावा वे अपने 5 साथियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों को भी रद्द करने की मांग कर रहे थे। अमृतपाल के नेतृत्व में ये भीड़ अपनी बात मनवाने में कामयाब रही। अमृतपाल सिंह जब बात करते हैं तो उनके अंदाज में वार्निंग होती है।
डीजीपी पे प्रेशर डाला जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप उनको बोला जा रहा है आप वीक गवर्नमेंट है, यही बोला जा रहा है ना। उस पे आके वो फिर ऐसा काम करेंगे, पहले उन्होंने किया मेरे पे एफआईआर करने का, फिर वो ऐसा काम करेंगे जो ये साइकिल को रिपीट करेगा।
एसएसपी अमृतसर ग्रामीण का कहना है कि अमृतपाल ने जब थाने पर धावा बोला तो गुरु ग्रंथ साहब और पालकी साहब को भी अपने साथ लाए थे और हमारी प्राथमिकता ये है कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
हमारे लिए सबसे बड़ा वहां था कि गुरु ग्रंथ साहब, पालकी साहब ये साथ लेके आए थे, तो जब गुरु ग्रंथ साहब हमारे सामने है तो ये हमारे लिए सबसे सर्वोच्च है। वो प्रायोरिटी हमारे सबसे ऊपर है कि गुरु ग्रंथ साहब या पालकी साहब को कोई नुकसान ना हो जाए, तो उस वजह से फिर हमें हमारी स्ट्रेटेजी, हमने सारा कुछ वो रिस्ट्रेन किया, सब कुछ चेंज किया ताकि किसी भी ये चीज़ से गुरु ग्रंथ साहब या पालकी साहब को अगर नुकसान हो जाए तो ये हमारे लिए ये हम नहीं होने दे सकते। हम हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और जब भी कुछ ऐसा होगा विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट मैं एक चीज़ आपको श्योर करता हूँ रिगार्डिंग लैंड ऑर्डर, रिगार्डिंग पीसफुल सिचुएशन, हम बिल्कुल कैपेबल हैं, हम उसको मेंटेन भी करेंगे।
इस शक्ति प्रदर्शन को पंजाब के अजनाल क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नोट किया गया। अमृतपाल सिंह सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा जो उठा रहे हैं वो खालिस्तान का है।
आई डिडंट सेट अमित शाह और मोदी, मीडिया काइंडली मिसकोटेड इट। अमित शाह सेड ही विल क्रश द खालिस्तान मूवमेंट इन एन इंटरव्यू। when you want to crush or suppress a peaceful movement, that's totally allowed in democracy, like a Hindu Rashtra movement, like you know, the socialist movement or any other movement. When a home minister says he will crush something, it's not a kind of home minister says something. I just refer to the history. I said Indira Gandhi did the same mistake. It's not just about she got killed after that. It's not about her murder. It's all about what happened after that. After attacking Darbar Sahib, there is a 10-year long militancy period in Punjab. Thousands of Sikh got killed in Delhi genocide. So it's not about threatening Amit Shah. He is threatening Sikh community. He is threatening the entire community who are aspiration of Raj. My effort is to revive Sikhi. And Sikhi revive Khalsa Raj. And Khalsa Raj is Khalistan.
खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन और भिंडरांवाले का नाम पूरे भारत के लिए बड़े गंभीर दौर की यादें ताज़ा कर देता है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई थीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी कार्यवाही हुई थी, फिर इंदिरा गांधी की हत्या की घटना हो गई थी। रॉबिन सिंह पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका मानना है कि वर्तमान मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसे खालिस्तान के मसले से जोड़ना उचित नहीं है।
ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगती है। इसको एकदम से आप खालिस्तान के साथ जोड़ दें, आप कहें कि अभी पूरा पंजाब खालिस्तान की तरफ मूव कर गया और लोग उस रेडिकल मूवमेंट में चले गए हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। पहली बात तो ये है, एक पंजाब में पिछले 7 साल में, मैं स्पेसिफिकली बरगाड़ी कांड के बाद जो सैक्रिलेजियस गुरु ग्रंथ साहब जी की हुई थी उसको बात लेके, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है पैन पंजाब में। इसमें अमृतपाल सिंह एक वैक्यूम के एक सेक्शन को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं इस वक्त।
अमृतपाल सिंह मीडिया से असंतुष्ट नजर आते हैं। उनका कहना है कि मीडिया लोगों को मिसगाइड कर रहा है, दूसरी ओर इस मसले पर राजनीति हो रही है जिसके नतीजे में हालात और भी खराब हो सकते हैं।
बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज जो होती है वो है जब मीडिया रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट बन जाती है। अब जो दिल्ली में, वहां पे बाकी स्टेट्स में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो मीडिया के थ्रू पता चल रही है सारी बात। अगर मीडिया खुद मिसगाइडेड होगा तो दूसरों को भी मिसगाइड करेगा। पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की और साथ में लाठी चार्ज शुरू किया, और उनको नहीं करना चाहिए था। 3 लेयर की बैरिकेडिंग सी अजनाला में, तो ऐसा काम करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात अमृतपाल सिंह के बारे में जानकारियां ये हैं कि 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में घुसे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने लाल किले के प्राचीर पर सिख धर्म का प्रतीक माना जाने वाला खालसा झंडा फहराया था। इन सबके लिए जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था उनमें पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू का भी नाम था। उसी साल सितंबर में, यानी लगभग 8 महीने बाद, सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम की एक संस्था बनाई। इसके लगभग 5 महीनों बाद दीप सिद्धू की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। इसे बहुत से लोग साजिश करार देते हैं। 29 सितंबर 2022 को वारिस पंजाब दे संगठन सुर्खियों में तब आया जब दुबई से लौटे एक नौजवान अमृतपाल सिंह ने इसके प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। इसके लिए दस्तारबंदी समारोह पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव में आयोजित किया गया। कुछ लोग इस बात पर हैरत जाहिर करते हैं कि कैसे 29 साल का दुबई से आया हुआ एक लड़का रातों रात इतना प्रसिद्ध हो गया। भिंडरांवाले तो एक धार्मिक नेता भी थे जिन्हें एक राजनीतिक पार्टी ने खड़ा किया था, और आगे उन्होंने क्या किया और कब किया, लेकिन अमृतपाल की इस कदर लोकप्रियता रहस्यमयी नजर आती है। कुछ टीकाकार इसके लिए कट्टरपंथी हिंदुवादी संगठनों की भड़काऊ बयानबाजी और हरकतों को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो सिखों को लगता है कि खालिस्तान की भी बात होनी चाहिए। ऐसे में उन्हें एक लीडर की जरूरत महसूस होती है तो उन्हें अमृतपाल में नजर आता है। फिर वे देखते हैं कि ये व्यक्ति सिखों के साथ हुई नाइंसाफी और बाकी घटनाओं की बात करता है तो वे उसकी बात सुनते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अपना विचार विस्तार से पेश करते हैं। उनका कहना है कि जो इंक्लूसिव और समावेशी आइडिया ऑफ इंडिया है, हिंदू राष्ट्र का आइडिया उसके विपरीत दिशा में देश को ले जाना चाहता है।
हिंदू राष्ट्र एक आइडिया ऑफ इंडिया है और जो अब तक एक कंसेंसुअल आइडिया ऑफ इंडिया रहा है अपनी तमाम सीमाओं के साथ, जैसे आप इंक्लूसिव कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, सेकुलर कह सकते हैं, हिंदू राष्ट्र उस आइडिया ऑफ इंडिया का एक अल्टरनेटिव है, उसके विरुद्ध है। एक मोटे तौर पर आप इसको भी कह सकते हैं कि नेहरूवियन कंसेंसस को रिप्लेस करने की कोशिश है। पिछले 10-11 साल में इसकी समाज में ऐसा लगता है कि स्वीकार्यता बहुत बढ़ी है। बहुत सारे लोग जो पहले इन चीज़ों से प्रभावित नहीं थे आज इनसे प्रभावित हुए हैं। जो भी हिंदुस्तान के इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म को मानने वाले लोग हैं, जो उस तरह के नेहरूवियन या गांधीयन नेहरूवियन कह लीजिए उस आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती।
पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का आइडिया न तो असली भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और न ही हिंदुइज्म का।
हिंदू राष्ट्र की जो धारणा है वो हिंदुस्तान के इतिहास और उसकी कल्चर की ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, वो वास्तविक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। हिंदुइज्म को तो बिल्कुल ही नहीं करती, और इस मामले में सावरकर बहुत स्पष्ट भी थे। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे वेगली हिंदुइज्म कहा जाता है, हिंदुत्व का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये साफ सावरकर ने अपनी किताब की शुरुआत में लिख दिया है। तो वो हिंदूनेस की बात करते हैं, हिंदुइज्म नहीं, हिंदूनेस। और ये जो हिंदूनेस या हिंदुत्व है, इसकी समस्या ये है कि इट सिंपली डज नॉट ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट द रियल लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कल्चर। आपको अकबर से बहुत ऐतराज है, दिल्ली में मानसिंह रोड भी है, और मानसिंह कौन थे? मानसिंह अकबर के सेनापति थे। बीरबल कौन थे? टोडरमल कौन थे? यानी आप अकबर को विलेन बनाएंगे, टोडरमल को नहीं बनाएंगे। ये टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे कि उनका कायम किया हुआ जो लगान का सिस्टम था और जमीन की माप जोक का सिस्टम था, वो थोड़े बहुत बदलाव के साथ आज तक चला आ रहा है। हिंदुत्व की समझ के मुताबिक हिंदुस्तान के इतिहास में जो भी मुसलमानों का योगदान है उसको इरेज किया जाना है। और आप इस बात पर ध्यान दें कि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश राज के स्मारकों के प्रति इतना आक्रामक रवैया इन लोगों का नहीं है। जैसे मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी हिंदुत्ववादी ने मांग की हो कि कलकत्ते के विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदला जाए। दिल्ली में अभी भी एक हेली रोड है, उसको बदलने की तो कोई मांग नहीं की जा रही है।
पुलिस थाने पर हमले की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और खालिस्तान का मुद्दा तो भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है, जिसे संभालने के लिए बड़ी सूझबूझ, एहतियात और दूरदर्शिता की जरूरत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपने सुना आज की बात, जिसे पेश किया अहमद अब्बास ने। और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम, सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की नई श्रृंखला की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में ईरानी महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यदि हम कहते हैं कि ईरान दुनिया के उन अभिजात्य देशों में से एक है जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च वैज्ञानिक रैंक वाले युवाओं को देश और दुनिया के सामने पेश करने में सक्षम है, ईरान के कुलीन और मेधावी छात्रों की चर्चा न केवल देश की सीमा तक सीमित है बल्कि दुनिया के कोने कोने में उनके बारे में बात होती है। 28 वर्षीय ईरानी लड़की सोहेला सामी दुनिया भर के उन युवाओं में से एक हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी क्षमताओं का अच्छी तरह से उपयोग किया और दुनिया की बेहतरीन युवा डॉक्टरों में से एक बनने में कामयाब रहीं। वो जर्मनी में न्यूरो सर्जरी के अंतिम वर्ष की इंटर्नशिप कर रही हैं, साथ ही गोल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं और इस छोटी उम्र में उन्होंने 500 न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन भी किए हैं। जर्मनी के हनोवर में इंटरनेशनल न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट में अपनी इंटर्नशिप शुरू करने वाली सोहेला सामी ने विश्व भर में न्यूरोलॉजी के मशहूर और अद्वितीय डॉक्टर प्रोफेसर समी से सर्जरी की बारीकियों को सीखा है।
ईरान की ये प्रतिभाशाली महिला अपनी विशेषज्ञता की जटिलता को इस तरह व्यक्त करते हुए कहती हैं कि ब्रेन सर्जरी सबसे नाजुक सर्जरी में से एक है जिसे एक डॉक्टर अत्याधुनिक और हाईटेक माइक्रोस्कोप के माध्यम से अंजाम देता है। एक न्यूरो सर्जन का काम इतना नाजुक होता है कि वे उन नसों पर काम करते हैं जो बालों से भी ज्यादा बारीक होते हैं। ब्रेन की स्किन बिल्कुल वैसी होती है जैसे उबले अंडे पर मौजूद बारीक सी परत। डॉक्टर माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी नाजुक परत का सामना करते हैं और ऑपरेशन के दौरान न्यूरो सर्जन का ध्यान हमेशा इस ओर लगा रहता है कि जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसकी ऑप्टिक नसें, हृदय गति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, याददाश्त, बोलने की ताकत और समझ की क्षमता काम कर रही है या नहीं।
जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा है कि हर कोई सच्चाई से परिचित है कि ईरानी महिलाएं विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। महान इस्लामिक क्रांति की सफलता से पहले के वर्षों में साक्षर महिलाओं की संख्या और लड़कियों की शिक्षा का स्तर बहुत कम था, लेकिन अब समाज का सांस्कृतिक वातावरण अनुकूल हो गया है और ईरानी महिलाओं की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि के अलावा लड़कियों में पढ़ने की इच्छा और विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों में सफलता दर में काफ़ी प्रगति हुई है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में 60% से अधिक छात्र महिलाएं हैं। इसके अलावा क्रांति के बाद ईरान में वैज्ञानिक विकास और प्रगति के आंदोलन पर इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने भी काफ़ी बल दिया है। उनके अनुसार हम रचनात्मक और अभिनव लड़कियों की प्रतिभा को खिलते और विश्व वैज्ञानिक ओलंपियाड में उनकी भागीदारी देख रहे हैं।
डॉक्टर सामी के पिता हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सोहेला भी बचपन से अपने पिता की तरह हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रोफेसर सामी के इंस्टीट्यूट में उन्हें प्रवेश मिल गया है तो उन्होंने तय किया कि वो अपना ध्यान न्यूरो सर्जरी पर केंद्रित करेंगी। इस बीच उनकी जान पहचान ऐसी महिलाओं से हुई जो न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में सफल रही हैं। साथ ही इस विषय पर उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ये एक ऐसा विषय है कि जिसकी इस समय ज्यादा जरूरत है। अपने काम की जटिलता और कठिनाई के साथ साथ डॉक्टर सामी अपने क्षेत्र और विशेषज्ञता में बहुत रुचि रखती हैं। वो इस संबंध में कहती हैं कि हम एक जटिल न्यूरो ऑपरेशन के लिए 12 घंटे तक एक पांव पर खड़े रहते हैं। वास्तव में न्यूरोलॉजी का क्षेत्र बहुत कठिन क्षेत्र है और इसमें पुरुष या महिला के बीच कोई अंतर नहीं है।
डॉक्टर सोहेला सामी कहती हैं कि न्यूरोलॉजी के विषय को एक अनंत सागर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां से हर दिन कई नए विषय सीखने को मिलते हैं। इस कारण यह क्षेत्र महिलाओं के लिए कुछ मायनों में कठिन हो सकता है, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि एक महिला में विशेष चाहत होती है जो मस्तिष्क के कार्य के अनुरूप हो सकता है। हालांकि रोगी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डॉक्टर के दिमाग पर दबाव के साथ 12 घंटे के ऑपरेशन को सहन करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा, क्षमता और शारीरिक शक्ति का होना इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल न्यूरोलॉजी चिकित्सा जगत की वो शाखा है जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। कई बार इन रोगों का उपचार करना मुश्किल जान पड़ता है, लेकिन एक कुशल न्यूरोलॉजिस्ट की बदौलत सही तरीके से इलाज किया जा सकता है।
निसंदेह समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका और कार्यक्षेत्र उनके प्राकृतिक मतभेदों के कारण अलग अलग हैं। इस्लाम के अनुसार एक महिला एक पुरुष की तरह एक मानवीय पहचान रखती है और पवित्र कुरान की व्याख्या के मुताबिक मानव गरिमा के उच्चतम तत्व के रूप में दिव्य आत्मा उनके शरीर में समान रूप से सांस ली गई है। जब पवित्र कुरान की आयतें मानव भ्रूण के वजूद में आने के चरणों को बयान करती हैं तो उसमें किसी भी लिंग का उल्लेख नहीं किया जाता, बल्कि उसमें एक नई घटना और निर्माण के अस्तित्व की बात होती है और इसका मतलब है कि पुरुष और महिला मानवीय दृष्टि से समान हैं, लेकिन दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के भेदों के साथ भिन्न भिन्न शारीरिक और मानसिक पहलुओं से उत्पन्न हुए हैं। उनमें से प्रत्येक भेद अपनी अपनी जगह एक प्रकार की अनिवार्यता मानी जाती है और इनमें से किसी का भी दोष नहीं है।
दोस्तों, जाहिर है इन मतभेदों को नजरअंदाज करना मानव स्वभाव के पथ से भटकाव है। इस बीच इस्लामी गणराज्य ईरान ने इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करते हुए महिलाओं और लड़कियों के विकास और उन्नति के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया। महिलाओं के वास्तविक क्षमता और उनके पुनरुत्थान और उनकी वास्तविक गरिमा को दर्शाते हुए ईरानी महिलाओं ने दुनिया को एक नया मॉडल और महिलाओं की भूमिका का एक अलग तरीका दिखाया है। वास्तव में इस्लामी व्यवस्था में महिलाओं को सम्मानित किया गया है और समाज को उनकी मानवीय स्थिति में उनकी क्षमता से लाभ पहुंचा है। इस स्थिति ने विकास की ओर महिलाओं के आंदोलन को गति दी। मुस्लिम महिलाएं इस तथ्य पर ध्यान देती हैं कि पुरुष और महिला दोनों ईश्वर की रचना हैं और मनुष्य एक ही हैं, और ईश्वर किसी को बिना कारण अस्तित्व में नहीं लाता और न ही उसे नज़रअंदाज करता है। पवित्र कुरान के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 195 में अल्लाह कहता है, तो उनके पालनहार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि निसंदेह मैं किसी के भी कर्म को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा।
शायद हमारी इस युवा जीनियस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है वो है उनका हिजाब। डॉक्टर सामी एक हिजाब वाली महिला हैं। ऐसे दुष्प्रचारों और प्रोपेगेंडों के विपरीत के जिनके अनुसार हिजाब महिलाओं की प्रगति के लिए बाधा है, उनका हिजाब उनके लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त करने में बाधा नहीं रहा है। डॉक्टर सामी की पहचान है उनका हिजाब और उनकी इस पहचान ने उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग ही स्थान दिया है। वो अपने हिजाब के संबंध में कहती हैं कि मैंने हिजाब को अपनी मर्जी और पूरी जानकारी के साथ चुना है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा हिजाब देश के अंदर या बाहर नहीं है, ये हर जगह और हमेशा है। जब डॉक्टर सामी से ये पूछा गया कि क्या हिजाब ने उनके लिए कभी कोई बाधा उत्पन्न की है और उससे उन्हें कोई समस्या हुई है, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि हिजाब ने सर्जरी के क्षेत्र में मेरे लिए कभी कोई रुकावट पैदा नहीं की, और यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में भी, जो पूरी तरह से तनाव का वातावरण रहता है और आपको लगातार अपने हाथ धोने पड़ते हैं, साथ ही पुरुष सहयोगियों के साथ काम करना पड़ता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने पूरी आज़ादी के साथ स्वयं इसका चयन किया है।
اس طرح مسلم مہیلائیں حجاب اور اپنی اسلامی اور مانویہ گریما کو بنائے رکھتے ہوئے اپنے جیون کو آگے بڑھاتی ہیں اور پرگتی کی نئی نئی اونچائیوں کو چھوتی ہیں۔ مسلم مہیلائیں جہاں ایک اور اپنی پوترتا کو بنائے رکھتی ہیں، وہیں دوسری اور وہ اپنے ساماجک کرتویوں اور اتر دائتوں کا سکریہ روپ سے نرواہ بھی کرتی ہیں۔ دوسرے شبدوں میں، ایک مسلمان مہیلا پوری سوتنترتا سے اس پہناوے کا چہن کرتی ہے، ساتھ ہی وہ سوئم کے ساتھ دوسروں سے سمپرک کو نردھارت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سماج کے ان مانو روپی درندوں سے خود کو سرکشت رکھتی ہے جو مہیلاؤں پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ساماجک سمبندوں، اپنے وچار، ترک، گیان، شمتاؤں اور ویوہارک شکتی کی بنیاد پر بناتی ہیں۔ اس طرح الگ الگ سماجوں میں اگر اس طرح کی سوچ والی مسلم مہیلا کے پہناوے کو انیا اچھے اسلامی نیتکتا اور گنوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ اسے ایک پربھاوشالی، شکتیشالی اور مضبوط ویکتی بناتا ہے جو اپنے کرتویوں اور پاریوارک بھومکاؤں کو سفلتا پوروک نبھاتے ہوئے ساماجک گتیویدھیوں میں سکاراتمک، اپیوگی اور پربھاوی بھومکا نبھائیں گی۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، کارکرم تھا سفل مہیلائیں۔ یہ آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.ir/hi۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا اب یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ آپ سبھی سے اب ہم انومتی چاہتے ہیں۔ شبھ راتری، خدا حافظ۔ Oh,